onu çektim.
कल क्या सुना था? अपने को अवतार समझो और उसके पहले मणि को ही देखना। मणि बहुत पीछे बैठते हैं पर तो आज बाबा कह रहे हैं और एक स्लोगन सदा याद रखना। कौन से स्लोगन है जो निरंतर याद रखना? कौन से वो स्लोगन है जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख, सारी लाइन खड़ी हो जाएगी मुझे देख कर करने के लिए। और हर घड़ी जो है वो जीवन की अंतिम घड़ी है, हर दिवस जो है वो अंतिम दिवस है इस जीवन का। और एक बल और एक ही भरोसा है, अब नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे। जो करने का समय है आज है, अभी है, अब है। और
कल्प कल्प की बाजी है,
ये कल्प कल्प की बाजी है। अभी हाथ से गया तो हमेशा के लिए गया, अब घर जाना है। सृष्टि चक्र पूरा हुआ, नाटक पूरा हुआ, अब घर जाने का समय है। शाम हो चुकी है सृष्टि की। क्या और
जो संकल्प हम करेंगे,
जो संकल्प हम करेंगे वो दुनिया हमारे संकल्प से शक्तिशाली वातावरण बनेगा। बाबा एक स्लोगन आज दे रहे हैं, एक स्लोगन सदा याद रखना कि जो बाप दादा कहेंगे, जो कराएंगे, जैसे चलाएंगे, वैसे ही करेंगे, चलेंगे, बोलेंगे, देखेंगे। यह है पांडव सेना का मुख्य स्लोगन। पांडव से बाबा बात कर रहे हैं। जो कहेंगे वह सोचेंगे, और कुछ सोचना नहीं है। इन आंखों से और कुछ देखना नहीं है। आंखें भी दे दी ना, आंखें हमने किसको दे दी? चिमन भाई जी, बाबा को नेत्रदान। तुम्हीं से देखू कि तुमको देखू? पूरे परवाने हो ना, परवाने को क्षमा बिगड़ और कुछ देखने में आता है क्या? आपकी आंखें और क्या और क्यों देखती? जब और कुछ देखते हैं तो बाबा के सिवा और कुछ देखते हो तो क्या हो जाता है? तीसरा मित्र बंद। आठ बाबा कहते हैं तो धोखा देती है। अपने को धोखा न दो, अपने को धोखा न दो। संपूर्ण अर्थात पूरा परवाना, यह है छाप। रिजल्ट तो अच्छी है लेकिन उसको अविनाशी रखना। तो क्या सुना कि बाबा एक स्लोगन आज दे रहे हैं कि जो बाप दादा कहेंगे वो, जो बाप दादा करेंगे, जो कराएंगे, जैसे चलाएंगे, वैसे ही करेंगे, चलेंगे, बोलेंगे, देखेंगे। कौन सा गुण यहाँ पर दिख रहा है? किस गुण की चर्चा हो रही है? आज्ञाकारिता और समर्पण, ये दो गुणों की चर्चा यहाँ पर हो रही है। एक है समर्पण भाव, है टोटल सरेंडर। भारतीय सभ्यता में सरेंडर का अर्थ दूसरा है और वेस्टर्न सभ्यता जो है पाश्चात्य, तो वहां सभ्यता का अर्थ सरेंडर का अर्थ है। वहां सरेंडर अर्थात हार मानना। जैसे सरेंडर का एक अर्थ है टू एक्सेप्ट डिफीट, नाज़ी सरेंडर्ड, झुक जाना, वो उस तरह से मतलब हारने का अर्थ है। भारत में उसका अर्थ भक्ति में और अभी यहाँ ज्ञान में कुछ और ही है। यहाँ अर्थ हो जाता है उसकी शरण में चले जाना, न्योछावर हो जाना, स्वाहा हो जाना, समर्पित हो जाना, बलिहार हो जाना, वारी जाना, कुर्बान होना, अपना मैं हटा देना और झुक जाना संपूर्ण। तो ये है सरेंडर की यहाँ पर परिभाषा। तो इस स्लोगन से दो गुण परिलक्षित हो रहे हैं, एक है सरेंडर और दूसरा है ओबीडियंस। ओबीडियंस अर्थात आज्ञाकारी, आज्ञाधारकता, आज्ञाकारिता। तो स्लोगन याद रखेंगे कि बाबा ने जो कहा है, बाप दादा जो कहेंगे, जो कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे ही करेंगे, चलेंगे, बोलेंगे, देखेंगे। जो करने को कहा वो करना, जो देखने को कहा वो देखना, जो सुनने को कहा वो सुनना, जो बोलने को कहा वो बोलना, जो सोचने को दिया है वही सोचना। ये एक तरफ। अभी दूसरा, जो करने को नहीं कहा है वो नहीं करना, जो देखने को नहीं कहा है वो नहीं देखना, जो सोचने को नहीं कहा है वह नहीं सोचना, जो बोलने को नहीं कहा है वो नहीं बोलना। इस पर काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहला है संकल्प। क्या सोचने को नहीं कहा है बाबा ने, उसका निर्णय कौन करेगा? ये व्यर्थ है और ये समर्थ है। क्या सोचने को नहीं कहा है? ये चीजें हैं, ये नहीं सोचना है तुम्हें। देह के बारे में सोचना ही नहीं है। वो तो भूलने की बात है, हम बात कर रहे हैं किसका नहीं सोचना है। देह का सोचना ही नहीं, ठीक है। और क्या और क्यों और कैसे, ये सब प्रश्न नहीं। और
जिसके बारे में नहीं सोचना उसको हम सोच रहे हैं, वो भी तो टाइम चलेगा।
पर ये ज्ञान भी तो चाहिए किसका नहीं सोचना है। विस्तार करना है, विस्तार की आवश्यकता है। संडे की मुरली थी, बाबा ने ना तो विस्तार को बहुत ये कहा है ना ही सार। केवल सार भी नहीं और केवल विस्तार भी नहीं। केवल विस्तार में चले जाए तो भी मुश्किल है, और केवल सार में ही स्थित हो जाए है तो बहुत अच्छी स्थिति, परंतु वो हो भी नहीं सकती। निरंतर सार स्वरूप में ही स्थित रहे। बाबा ने बीच का मार्ग बताया है, सार में स्थित होकर विस्तार में आना, तो दो चीजें हो जाएगी। कौन सी कमलेश भाई? संडे की मुरली, सार स्वरूप में स्थित होकर विस्तार में आना। चकल का स्लोगन ही बोल दो। विस्तार का आकर्षण नहीं होगा, और देखते, बोलते, वर्णन करते और सुनते सब कुछ खेल जैसा लगेगा। किसका अभ्यास करना है? राजयोगी को। विस्तार से सार और सार से विस्तार, ये अभ्यास है। विस्तार की भी आवश्यकता है। ये ज्ञान का विस्तार हम अगर नहीं करते तो ज्ञान समझ में नहीं आता है। ज्ञान की पॉइंट्स का विस्तार करना, योग का विस्तार करना समझने के लिए, धारणा की एक पॉइंट का विस्तार करना, शक्ति की एक एक पॉइंट का विस्तार करना, ज्ञान की एक एक पॉइंट का विस्तार करना। तुरंत मन किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है जब तक उसे एक्सप्लेनेशन ना दिया जाए, जब तक उसको थोड़ा समझाया ना जाए कि ये ऐसा ऐसा है, तो वो मानता है, स्वीकार करता है। किसी को अगर कहा आज से ये खाना बंद और ये खाना चालू, तो दिन रात जो खाना नहीं बोला है बस वही याद रहेगा कि ये। जब तक उसे पूरा समझाया नहीं जाए कि ये नुकसान है, तो वो स्वीकार करेगा। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं, हम बात कर रहे थे किन बातों के बारे में सोचना नहीं है, फिर से वही प्रश्न है। निगेटिव, जिसमें दूसरों के प्रति घृणा,
कोई भी कमजोर संकल्प,
नफरत, ईर्ष्या, ये सारे समाया हुआ है। वो चीजें, वो संकल्प जिसमें शुभ भावना नहीं है, वो चीज हीन भावना, शुभ भावना है जिसमें समाई हुई नहीं है। दूसरा आपने
कमजोर संकल्प,
कमजोर संकल्प, हीनता के संकल्प। एक है, उसमें भी दो है, एक है सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एक है इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स। मैं नहीं कर सकता, ये मुझे नहीं आता है, मैंने आज तक ये किया नहीं है, मुझे इसका कोई अनुभव नहीं है। विश्वास की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है इन संकल्पों में। पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे में इतना साहस नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, ये सारे हीनता के संकल्प है। उसके दूसरी तरफ है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये तो केवल हम ही कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता इनको इनमें इतनी ताकत है, शक्ति है, अनुभव है जो ये चीज करके दिखाए। ये तो केवल मैं ही कर सकता हूं, ये भी नहीं, मेरे अलावा, मेरे अतिरिक्त, मेरे सिवाय ये कोई कर नहीं सकता, ये सबसे अच्छा मैं ही कर सकता हूं, मुझे ही ज्यादा अनुभव है। ये तो नए नए हैं, हम बहुत पुराने हैं। ये अभिमान की भाषा है, अभिमान के स्वर यहाँ पर है। तो अभिमान के भी स्वर ना हो, ये तो बहुतों में है नहीं, परंतु जो हीन भावना के स्वर है वो बीच बीच में सुनाई आते हैं, हीनता के स्वर, हीनता के बोल, नहीं कर सकता, इन्फियोरिटी जिसमें झलकती है। तो वो भी ना हो और ये भी ना हो, तो वह संकल्प ना हो जिससे दूसरों की जो इमेज है वो हम गिराए मन ही मन में। एक तो ये कमी कमजोरियों के संकल्प, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी, आज का वरदान में है ना, चाहे किसमें कितने भी अवगुण हो, तुम्हें गुण ही देखने, यही गुण ग्राहकता है, गुण ग्राही। जैसे दत्तात्रेय को दिखाया ना, 24 गुरु उसने बनाए, जो कुछ दिखता गया सृष्टि में उन सबको अपने अपना गुरु बनाया, हर एक चीज को अपना गुरु बनाया। यह भाव कि ये सभी मेरे गुरु है, जो भी है दुनिया में, छोटे बड़े, सबसे मुझे कुछ ना कुछ तो सीखना ही है। हर एक व्यक्ति हमें कुछ ना कुछ सिखाता जरूर है, क्योंकि उसका जन्म किसी और भाषा में, किसी और परिवार में, किसी और संस्कृति में, किसी और संस्कार के साथ, किसी और विशेषता गुण के साथ हुआ है, तो जो कि हमें पता ही नहीं। इसके लिए हमें सबसे सीखना है, चाहे छोटा बच्चा हो या कोई वृद्ध अनुभवी व्यक्ति हो, हर एक से सीखने का भाव। अवगुण है, थोड़ा सा उनको नजरअंदाज करके क्या मैं इससे सीख सकता हूं, ये भाव अपने अंदर लाना है। क्या सोचना है, फिर है क्या बोलना नहीं है, इसकी हमने बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, क्या क्या नहीं बोलना है, गिराने वाले, अपमान वाले, नेगेटिव, क्या क्या सुनना नहीं है, फिल्मी गाने और किसी की ग्लानी, ग्लानी के बोल, परचिंतन के बोल, तो ये सारी जो बोल है ना, ये सुनने में भी बड़ा सुख होता है, एक अलग प्रकार का। अगर किसी ने हमें तंग किया हो, उसके बारे में कोई दूसरा आके भी कह रहा है हमको भी बहुत तंग किया था, तो कितना मधुर लगता है सुनने में। हमने कहा ये हमको बहुत तंग करता है, तुमको नहीं, बहुतों को तंग किया है इसने। अच्छा, और कौन कौन है, जिनको जिनको तंग किया है। फिर चालू चिंतन, घंटे ऐसे ही बीत जाएंगे, पता ही नहीं चलता है कहां से कहां चर्चा चली गई। ये जो बोल है ये व्यर्थ को बढ़ावा देगा, परंतु इसमें फंसने के बाद हमें ही पता नहीं चलता है इसमें से निकले कैसे, फंस गए उसके बाद पता चलता है। तो क्या सुनना नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंदर में धारण नहीं करना, ऊपर से आए और चले जाए। सुनाई तो सारे दिन भर बहुत सारी चीजें हमको देती रहती है, पर जिस चीजों में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, वो कहां हम सुनते हुए सुनते हैं। तो ये एक बात, देखना क्या नहीं है, देख वो तो एकदम ऊपर के स्टेटमेंट से थोड़े नीचे, दूसरे की थाली में ये एकदम प्रैक्टिकल है। दूसरे की थाली में एक सब्जी ज्यादा देरी दिख रही है, कहाँ से लाई, बाहर तो नहीं थी?
नहीं, अगर काम में तो डाल देंगे उस तरीके
से। अच्छा, उस तरीके से ना, दातापन के भाव से
तो देख सकते हैं।
अच्छा, पर हमारी कम पड़ जाएगी फिर। तो किसको क्या क्या मिल रहा है, चाहे केवल सुविधा, केवल भोजन नहीं, सुविधा है उसके पास दो दो, हमारे पास एक ही, उसके पास वो है, हमारे पास नहीं है। ये भाव अगर रहा तो दुख की अनुभूति होगी। जो भी जिसको मिल रहा है उसके भाग्य के अनुसार ही मिल रहा है, ये ड्रामा न्यायकारी है। इस ड्रामा में कहीं पर भी कोई भी अन्याय नहीं हो रहा है। दिख रहा है ऊपर से किसी को सब कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये केवल ऊपर का सीन है। हरेक को वही मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए। हम केवल एक संकुचित दृष्टि से, ट्यूबुलर विजन, उतना ही हम देख रहे हैं। एक काल त्रिकाल दर्शन नहीं है हमारा, एक काल दर्शन है। इसके लिए ये अनुभव दुख का हो रहा है कि उसे ये मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? उसे मान मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? वो आगे बढ़ रहा है, हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? सब उसकी तारीफ कर रहे, हमारी क्यों नहीं कर रहे? हम भी तभी से आए हैं जब से वो आया है, कुछ तो होगा ना उसमें, कुछ तो होगा। हरेक को वही मिल रहा है जो उसके भाग्य में है, हरेक को वही मिल रहा है जिसका वो पात्र है। इसके लिए ईर्ष्या भाव होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। सबके प्रति एक ऐसा भाव हो कि सबको अच्छा मिले, सब हमसे ज्यादा मिले सबको, तो बहुत अच्छा। क्योंकि हो सकता है अगर हमें ज्यादा मिलने लगे तो हम ये भी सोचने लगे, देखो हम में ये महानता है, विशेषता है, गुण है, इसके लिए ये मिल रहा है। एक व्यक्ति होता है वो इतना अच्छा होता है, क्रिश्चियन में दिखाया हुआ है, क्रिश्चियन में स्टोरी ऑफ होली घोस्ट, होली शैडो करके है, होली शैडो, उसमें दिखाया एक व्यक्ति होता है कि जो इतना अच्छा होता है कि एक बार दो फरिश्ते आसमान से आ जाते हैं उसके पास और कहते हैं कि हमें तुम्हें वरदान देना है, तुम्हारी जो आचरण है बहुत ही श्रेष्ठ है। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा वरदान। वो कहता है नहीं, हम लो नहीं तो हम जबरदस्ती देंगे, क्योंकि हमें स्वयं भगवान ने भेजा है। तुम्हारे कर्म इतने श्रेष्ठ है, इतने दिव्य है, इतने महान है कि तुम्हारी चर्चा ऊपर ऊपर तक पहुंच गई है, तो तुम्हें तो कुछ लेना पड़ेगा। तो कहता है मुझे नहीं चाहिए। नहीं, कुछ तो वरदान ले लो। नहीं चाहिए। अच्छा, कम से कम इतना तो ले लो कि जिसे तुम स्पर्श करोगे उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए ऐसा वरदान, क्योंकि लोग फिर मेरे पीछे आएंगे। वो कहता है ऐसा वरदान तो भगवान को ही करने दो, सबको ठीक। वो कहता है कि जहां जिस खेत से तुम गुजरोगे, जो जहां पर सूखा पड़ा हुआ है वहां पर हरियाली छा जाएगी। वो कहता है मुझे ये भी वरदान नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर मैं करने लगूं तो लोग भगवान से दूर हो जाएंगे और मेरी तरफ आ जाएंगे। उसको बहुत सारे प्रलोभन देते, तुम ये वरदान ले लो, वो वरदान ले लो, ऐसा ले लो, वैसा ले लो। बोलते मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बोलते नहीं, हम तुमको देंगे ही, एक तो तुमको लेना ही पड़ेगा। वो कहता है कि अगर देना ही तो ऐसी चीज करो कि मैं जहां से भी गुजरू मेरे हाथों से श्रेष्ठ कर्म होते रहे, परंतु वो क्या कर्म हो रहे हैं मुझे पता ना चले। आई शुड डू गुड डीड्स बट आई शुड नॉट नो दैट आई एम डूइंग गुड डीड्स। तो वो कहते हैं कि उसको एक वरदान देते थे, वो ऐसा वरदान देते कि तुम्हारी जो परछाई है तुम्हें कभी नहीं दिखेगी, सामने कभी नहीं आएगी, इधर या उधर, जहां पर तुम चलोगे, जहां जहां तुम्हारी परछाई पड़ेगी, जिस झरनों के पास से तुम जाओगे, वो झरनों में जो सूखे है उसमें पानी आ जाएगा, जिस खेती से तुम जाओगे वहां से हरियाली आ जाएगी, जिस गांव से तुम गुजरोगे वो होली शैडो होगी केवल एक, पर तुम्हें नहीं पता चलेगा। वो वरदान ये मानता है कि मेरे हाथों से श्रेष्ठ कर्म हो, पर मुझे पता ना चले कि ये श्रेष्ठ कर्म मेरे हाथों से हो रहे हैं। बीमार व्यक्ति अगर है, उस पर ये परछाई पड़ जाए तो वो स्वस्थ हो जाएगा। तो ऐसे उसको सारे वरदान देते हैं। होली शैडो, लोग आज जो कहानी है ये होली शैडो सबको याद है, पर वो व्यक्ति कौन है वो किसी को याद नहीं है। होली शैडो की ही महिमा है, वो पवित्र परछाई उसकी महिमा है, परंतु वो व्यक्ति कौन है था उसके आज तक पता नहीं कौन व्यक्ति था। पर ये मान्यता अभी भी है कि होली शैडो आ जाए और ठीक कर जाए, वो छाया पड़ जाए और ठीक हो जाए। तो हम जो भी करें, क्योंकि हम अच्छे ही कर्म करेंगे, परंतु उसमें भी माया ये है कि अच्छे कर्म करते 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 उसी का अहंकार आ जाता है। बुरे कर्म तो छोड़ दिए हैं, बुरे कर्म ब्राह्मणों से हो ही नहीं सकते, होगा क्या, सेवाएं होगी। अहंकार सेवाओं का ही आएगा कि हमने ये सेवा की, हमने वो सेवा की, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। वो दिखाते ना रामचरित्र, रामकृष्ण परमहंस, एक तीन चोर तीन डाकू तीन थ्री रॉबरर्स की कहानी बताते हमेशा, कि एक व्यक्ति एक जंगल से गुजरते रहता है तो तीन डाकू उसे पकड़ लेते हैं। पहला डाकू जो होता है बहुत ही निर्दयी होता है, वो उसे बांध देता है, झाड़ से बांध देता है और बहुत मारता है उसे। दूसरा जो डाकू होता है सब कुछ लूट लेता है उसके पास जो भी है, और तीनों निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद तीसरा डाकू वापस आता है, थोड़ा रहम दिल होता है, थोड़ी करुणा जागती है हृदय में। वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें छुड़ाता हूं, तुम देखो वो रास्ता दिख रहा है गांव के बाहर का, तुम चले जाओ यहां से जंगल के बाहर का। वो कहता है तुम मुझे छोड़ दो। वो डाकू कहता है मैं भी नहीं आ सकता क्योंकि पुलिस वहां पर है, मैं भी डाकू हूं। सतोगुण तमोगुण रजोगुण और सतोगुण तीनों ही डाकू है। पहला है रजोगुण जो कि मारता है और बांधता है, दूसरा है रजोगुण जो कि सब कुछ लूट लेता है, तुम्हारे जितने दिव्य गुण है, प्राप्तियां है, परमात्मा प्रेम है, ईश्वरीय कृपा है, सब कुछ छीन लेता है तुमसे, आध्यात्मिक दरिद्रता को ले जाता है। तीसरा जो डाकू है वो भी डाकू ही है, वो छुड़ाता जरूर है उन दोनों से, पर पार वो भी नहीं ले जाता है, वो केवल रास्ता बताता है कि इस रास्ते से तुम चले जाओ। वो है सतोगुण। हमें बनना है सतो प्रधान, सतो रजो तमो रजो और सतो से भी पार, क्योंकि सतोगुण जहां है वहां पर अभिमान आ सकता है, वहां पर अहंकार का जन्म होता है। अध्यात्म मार्ग में व्यक्ति जो है काम को छोड़ देते हैं, लोभ अहंकार काम क्रोध मोह ये सब छूट जाता है, पर जो बच्चा बचता है वो अहंकार। हमने ये सेवाएं की, हम ये कर रहे हैं, हम में ये गुण है, हम में ये विशेषताएं हैं, ये सेवा हमको देनी चाहिए। वो कौन डिसाइड करेगा कि तुमको देनी चाहिए या उसको देनी चाहिए, ये भगवान के ऊपर है, वो डिसाइड करेगा। वो चाहे तो किसकी आवाज का प्रयोग कर सकता है, उसको लगेगा कि इसकी आवाज में कुछ है तो वो उसका फायदा उठाएगा, वो देखेगा कि इसमें ये गुण बहुत अच्छा है वो उसको फायदा, वो देखेगा इसकी बुद्धि बहुत अच्छी है। ही विल डिसाइड, इट इज नॉट अप टू यू, इट इज अप टू हिम टू डिसाइड। वो सोचेगा किसको कहां किस सेवा में किस समय यूज करना है। हम सोचते हैं कि हम ये सेवा बहुत अच्छी कर सकते हैं, ये सेवा हमको ही देनी चाहिए, हम तो ये सेवा के लिए हमने जन्म लिया है, पर वैसा नहीं होगा। तुम जो सोच रहे हो शायद जो सेवा अभी सामने दिख रही है उससे कई अनंत गुना बड़ी सेवा तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रही है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। इसके लिए स्लोगन क्या है, जो कहेंगे जो कराएंगे, जैसा चलाएंगे वैसा करेंगे, चलेंगे बोलेंगे देखेंगे। समर्पण भाव है यहां पर, और ओबीडियंस है, एब्सोल्यूट ओबीडियंस, टोटल सरेंडर एंड एब्सोल्यूट ओबीडियंस, संपूर्ण समर्पण और संपूर्ण आज्ञाकारिता। देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू एंड डाई. आर्मी में एक नियम होता है, ये मत पूछो पूछो कि क्यों. देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू, करो और मरो. ये नियम होता है. देर इज अ क्वेश्चन या कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड तो है ना, वहां पर प्रूफ करना होता है कि मैं श्रेष्ठ हूं. परंतु अगर हम देखा जाए तो बचपन से लेके तो जब तक बच्चा जन्म लेता है उसको संघर्षमय एक मैदान में छोड़ दिया जाता है जहां पर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है आउटसाइड, कि जहां पर कॉम्पिटिशन ही कॉम्पिटिशन है. परंतु अगर देखा जाए तो जो शिक्षा प्रणाली है हमारी, एजुकेशनल सिस्टम, इज इट राइट, इस पर अगर गहराई से सोचे तो जो हम उसमें से डाला जाता है और जो लास्ट में जो प्रोडक्ट निकलता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद, वो एक इट्स सॉर्ट ऑफ मैकेनिक जैसा होता है. आउटसाइड वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, पर इसका अगर अंतिम रिजल्ट देखा जाए तो क्या है वो. अगर इसमें डीपली हम चिंतन करें, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होके जो व्यक्ति निकलता है वो किस चीज में लगता है, उसका लक्ष्य कभी संसार का कल्याण करना नहीं होता है, उसका लक्ष्य कुछ और ही होता है, धन कमाना, ये करना. जैसे मेडिकल का ही ले लो, मेडिकल में किसी को डालो, वो हो गया, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन. पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर फ्री सीट में एडमिशन नहीं मिलती है, 30 लाख, 60 लाख, 90 लाख, 1-1 करोड़, इतना डोनेशन, वो सब करने के बाद जब व्यक्ति निकलता है, जैसे कोई सर्जन बन गया, अभी सर्जन बनने में उसको कितने सारे लाख, 80 लाख, 1 करोड़ लग गए. अभी उसके बाद उसका लक्ष्य ये होगा कि किसी गांव में जाके सेवा करूं. कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड जो है उसमें सर्वाइव करना, दैट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ. रियलिटी वही है अगर देखा जाए तो. परंतु अगर आध्यात्मिक रीति से चिंतन किया जाए तो कहीं ना कहीं वो हम गलत जा रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं दोष है, इस सिस्टम में ही दोष है जो सिखाया जा रहा है बच्चों को. क्या वो बच्चे क्रिएटिव हो रहे हैं? क्या क्रिएटिविटी डेवलप की जा रही है? नहीं, वो मैकेनिकल रोबोट्स बन के निकल रहे हैं वहां से. उनका जो चिंतन शक्ति है वो कहाँ जा रही है? वो तो समाप्त हो रही है एक तरीके से अगर देखा जाए तो. उनको जो सिखाया जा रहा है बस एग्जाम के लिए पढ़ना है, स्ट्रेसफुल है. छोटे छोटे बच्चे पीडियाट्रिक्स में देखा जाए, आपने भी देखा होगा, डॉक्टर साहब तो खुद ही पीडियाट्रिक डॉक्टर है, तो देखा जाए तो उनमें भी कितना स्ट्रेस है, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, एग्जाम का स्ट्रेस, बहुत हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस है. एजुकेशन इज वॉट विवेकानंद ने एजुकेशन की डेफिनेशन दी है, इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन. जो संपूर्णता वहां पहले से है उसका प्रगटीकरण, उसका आवे, उसको पूर्ण बाहर निकालना, उघाड़ना उसको, दैट इज एजुकेशन. और हमारा एजुकेशन क्या है? रोट लर्निंग. ये है, इसको याद करो और एग्जाम में जाके लिखो, जो नहीं लिखेगा वो फेल. इस तरह से पढ़ाइए. तो प्रश्न वही आता है कि ये सारा एजुकेशनल सिस्टम है, इट इज नोन एज मैकुलाय सिस्टम ऑफ एजुकेशन. वो 1885 में जब भारत में पहले ये एजुकेशन सिस्टम नहीं था, पहले तो गुरुकुल थे, वहां इस तरह की पढ़ाई नहीं थी, वहां तो कुछ और तरह की पढ़ाई थी. अभी जो मैकुलाय सिस्टम ऑफ एजुकेशन है ये पूरा 85 और अब तक जो चल रहा है, इसमें तो जस्ट रोट लर्निंग है. क्रिएटिविटी, रचनात्मक कहां बन रहे व्यक्ति? अगर कोई कहे कि मुझे कवि बनना है, कोई माँ बाप को कोई बच्चा कहता है कवि बनना है या मुझे संगीतकार बनना है, तो कहाँ उसकी मानते हैं? उसे पढ़ाई, उसके कमाएगा कैसे हो? ये सारी बहुत सारी बातें उसमें. परंतु इनको हमने कम क्यों छोड़ समझ रखा है? रचनात्मकता का विकास नहीं हो रहा है, जो लॉजिकल है बस उसी का उसको बढ़ा रहे, तो जो बन रहे है वो. यहाँ बाबा कुछ और बात कर रहे है, ओबीडियंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां जो हमें बता रहा है वो सुप्रीम अथॉरिटी है. और ओबीडियंस भी हमारा केवल ऐसा बिना समझ का ओबीडियंस नहीं है, समझ के। बाबा ने हमेशा मुरलियों में कहा है, मैं जो कह रहा हूँ वो और शास्त्रों में जो लिखा है वो, एक तरफ लखो, जज करो राइट क्या है, उसके बाद डिसाइड करो। केवल ऐसे ही नहीं कि कह दिया, वो तो वैसे करे कोई तो भी फायदा ही है, परंतु पूरा सोच समझ कर ओबीडियंस। आज किसका टाइम है? तो आज का जो गुण है जिसके ऊपर सारे दिन भर चिंतन करना है कि बाबा ने क्या क्या कहा है और मुझे क्या क्या करना है, मैं कहाँ तक कर रहा हूँ। हम देखने का पॉइंट चल रहा था जो हम छोड़ दिए, देखने की ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें देखना नहीं है, उसमें तो टीवी और ये सारी चीजें बहुत सारी आ जाती है। आज के जो युग में टीवी एक मेन है, वीडियो और उसमें जो वीडियो क्लिप्स, इतनी माया है ये सब चीजों में कि जो उसमें गया समझ लो गया, निकलने का कोई चांस ही नहीं। क्या नहीं देखना है वो पॉइंट था। क्योंकि माइंड की टेंडेंसी ऐसी है, अच्छा सब दिख रहा है, एक घंटे में हमने अच्छा सब देखा, उसमें पांच मिनट अगर कुछ ऐसा दिख गया जो नहीं देखना चाहिए था, वो जो 55 मिनट देखा वो भूल जाएगा, और जो नहीं देखना था बस वही याद है, वही सबकॉन्शियस में चला गया, क्योंकि वही बताया गया था ये नहीं देखना ये नहीं देखना, और उसके प्रति क्यूरियोसिटी और ज्यादा है, यही देखना नहीं है, वो देखा ऐसा कि बस 5 मिनट में पूरा सबकॉन्शियस और स्वप्न में और कहां से कहां निकल चला गया अंदर ही अंदर। इसके लिए बहुत खतरा है। अच्छा, हम जो देख रहे हैं अगर देखा जाए, कोई कहता है ये सीरियल बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, पर जो एक्टर्स है उसमें काम कर रहे हैं, व्हाट इज देयर स्पिरिचुअल कैलिबर, उनका आध्यात्मिकता कितनी है उनकी, वो किस लिए कर रहे हैं। चलो बहुत अच्छा सीरियल है, एक धार्मिक सीरियल है, उसमें वो जो राम का पार्ट प्ले कर रहा है, वो उसका स्पिरिचुअल कैलिबर क्या है, वो किस लिए कर रहा है, संसार का कल्याण करने के लिए या पैसे कमाने के लिए। वो जो डायरेक्टर है, वो जो उसके वो प्रोड्यूसर है, वो किस भाव से उस सीरियल को संसार के सामने रख रहे हैं, वो श्रेष्ठ भाव है तो हाँ, परंतु ये सारी फैक्टर, ये बहुत सारे फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं, वो सबका प्रभाव हम पर पड़ेगा। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि ये जस्टिफाई नहीं कर सकते। बाबा ने एक शब्द में कहा, इन सबसे तुम्हें दूर रहना, क्योंकि उसमें पता नहीं कब क्या दिख जाए। 10 मिनट बहुत अच्छा है, हम कहते, कोई कहते हम खाली न्यूज ही देखते हैं, खाली न्यूज, और न्यूज में 1 मिनट की एडवर्टाइजमेंट आ गई, वो एडवर्टाइजमेंट में जो देखा वो 3D है, वो कोई किताब नहीं है कि आज मुरली पढ़ी और कल याद है, वो तो गई, आज पढ़ी आज की वहां की वहीं रह गई, वो 3D है, उसमें चलते फिरते है, वॉइस भी है उसमें, साउंड है, वो इधर से सुन भी रहे, देख भी रहे, अनुभव भी कर रहे, फीलिंग भी कर रहे, वो जो भी देखेंगे वो अंदर चला जाएगा, क्योंकि 3D है वो, ये 1D है इसका। ये जो क्लास है यही उसका 3D बनाना है, ये जो शब्द है इसको यहाँ से निकालना, उछालना आसमान में, उसका चित्र बनाना, उसको सुनना देखना अनुभव करना, कलराइजेशन पिक्चराइजेशन विजुअलाइजेशन, ये क्लास का उद्देश्य वो है। यही है उसका 3D बनाना। इसके लिए क्या देख रहे, 10 साल पहले जो किताब पढ़ी थी भूल गए, 10 साल पहले जो मूवी देखी थी, अभी ये सीन, अभी इसके बाद ये सीन सब याद है, इसमें वो एक्टर है, इसमें ये सॉन्ग है, इसमें ये डायलॉग है, वो भूला नहीं है, पर 10 साल पहले जो मुरली सुनी थी ओम शांति भवन में, वो बताओ, हजारों सुनी और हजारों गई, कुछ भी पता नहीं कहाँ है। इसके लिए जो देखते हो बहुत ध्यान से देखना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो अंतर्मुक्ता की गहन गुफा में।